أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمام برادران و خواہران کو، درس میں موجود سب عزیزان کو خوش آمدید. ماہ مبارک رمضان کا آغاز ہو چکا ہے اور آج الحمدللہ ہم نے پہلا روزہ اپنا مکمل کیا، اور خدا کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ماہ مبارک رمضان کے ان ساعات میں، ان گھڑیوں میں بہترین انداز میں ہم روزہ اور اس سے حاصل ہونے والی برکات سے استفادہ کریں گے انشاءاللہ. اور نہ فقط یہ کہ بھوک و پیاس، بلکہ ہم روزے کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے کوشش کریں گے کہ ہم اپنے جسم کے دیگر اعضاء، آنکھ، کان، ناک اور اسی طرح اپنے اعضاء و جوارح کو بھی روزہ دار بنائیں. اذان محترم، ہم نے اس درس قرآن میں انشاءاللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر سورہ والناس تک کی تلاوت کا ارادہ کیا ہے. انشاءاللہ اللہ ہم سے قبول فرمائے، اور آج سورہ محمد سے ہم اپنے اس درس کا آغاز کریں گے. اور انشاءاللہ آپ میں سے جن دوستوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کھول لیں گے، اور جن کے پاس قرآن مجید نہیں بلکہ اپلیکیشن اگر موجود ہیں تو وہ اپلیکیشن کے ساتھ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تلاوت میں. اپلیکیشن ہم جیسا کہ عرض کرتے رہتے ہیں کہ اس قرآن مجید کی اس تلاوت کے لیے جس اپلیکیشن کا ہم جس سے ہم استفادہ کرتے ہیں وہ شیخ محسن النجفی صاحب کا ترجمہ ہے بلاغ القرآن کے نام سے، اور اس کا لنک ہمارے اس درس کے چیٹ وغیرہ میں آپ کو مل جاتا ہے، اور درس کا جو میسج آتا ہے اس میں بھی وہ لنک موجود ہے، آپ اس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سورہ محمد قرآن مجید کے 26 پارے میں یہ سورت موجود ہے. اس سورت کی دوسری آیت میں رسول اللہ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مذکور ہوا ہے، اس لیے اس کا نام اسی آیت کے اندر اللہ کے نبی کے نام آنے کی وجہ سے اس سورہ کو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے. اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے جسے اس کو سورہ قتال کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کے احکامات موجود ہیں، اس لیے اس کو سورہ قتال کہا جاتا ہے. آغاز سے پہلے میں چند ایک نکات کی شکل میں اس سورہ میں جو اس سورت کے اندر جو مطالب ہم پڑھیں گے اس کا ایک مختصر سا جائزہ پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. 7 قسم کے موضوعات ہیں اس سورت میں کہ جو انشاءاللہ ہم جن سے استفادہ کریں گے. پہلا جو موضوع ہے وہ ایمان اور کفر کا مسئلہ، اور اس دنیا میں اور اس جہان میں مومنین اور کفار کے حالات کا تقابل. پہلے حصے میں جو آیات ہیں اس میں ایمان کے بارے میں، کفر کے بارے میں، اور مومنین اور کفار کے جو حالات ہیں اس دنیا میں اور اگلی دنیا میں وہ بیان ہوں گے. اس کے ساتھ اگلے مرحلے میں دشمنوں کے ساتھ جنگ اور جہاد کے مسئلے پر واضح اور تفصیلی بحث ہے، اور جنگی قیدیوں کے متعلق بھی حکم اس میں موجود ہے. تیسرا جو حصہ ہے، تیسرا موضوع جو اس سورت کے اندر موجود ہے، وہ اس کا ایک بڑا حصہ منافقین کے حالات کی تشریح کرتا ہے جو ان آیات کے نزول کے وقت مدینہ میں تخریبی سرگرمیوں میں مصروف تھے. منافقین کے بارے میں اس کے اندر بات ہے. ایک ضمن ایک نقطہ عرض کر دیتا ہوں، جیسا کہ ہم نے آپ نے سنا ہے، ہمیں پتا ہے कि कुरान मजीद की सूरतों की जो तकसीम है उसमें मदनी सूरतें और मक्की सूरतों में तकसीम किया जाता है। वो सूरतें ज़्यादातर वो सूरतें कि जो हिजरत से पहले नाजिल हुई, मक्का में नाजिल हुई, उनको मक्की सूरतें कहा जाता है, और जो सूरतें मदीना में नाजिल हुई, हिजरत के बाद नाजिल हुई, उनको मदनी सूरतें कहा जाता है। मक्की सूरतों के अंदर ज़्यादातर जो बात होगी वो मुशरिकीन के बारे में और कुफार के बारे में होगी, मदनी सूरतों के अंदर मुनाफिकीन के बारे में बातें मौजूद होंगी, क्योंकि मदनी सूरतों में मुनाफिकीन का मौजू है, क्योंकि मुनाफिकीन का खुद वजूद जो है उनका आगाज मदीना में हिजरत के बाद जब इस्लाम को कुव्वत मिली, तक़वियत मिली, तब ही मुनाफिकीन वाला मौजू सामने आया। चौथा मौजू जो इस सूरत के अंदर मौजूद है, तो इसके एक हिस्से में ज़मीन की सैर गुज़िश्ता अक़वाम के अंजाम के सिलसिले में तहकीक की बात की गई है और इनके अंजाम से दर्स इबरत हासिल करने की दावत दी गई है। कुछ आयात में पांचवा जो हिस्सा है, कुछ आयात में जंग के मसले के मुनासिबत से इलाही इम्तिहान का तज़किरा है। छठे हिस्से में एक और हिस्सा इन्फाक यानी अल्लाह की राह में खर्च करना, इसके बारे में बात की गई है, जो बज़ात खुद जिहाद की एक किस्म है, यानी इन्फाक खुद जिहाद की एक किस्म है, और इसका नुक्ते मुकाबिल बुखल है। इन्फाक का जो ऑपोजिट बनता है, मुतजाद बनता है, मुकाबिल बनता है, वो बुखल है। इसके बारे में भी इस सूरत में गुफ्तगू की गई है। इस सूरत की बाज़ आयात में इसी मुनासिबत से कुफार के साथ सुलह जो शिकस्त और जिल्लत का मूजिब बने की बात की गई है, और इस किस्म की सुलहों से रोका गया है। मजमूई तौर पर इस सूरत में जिस मसले पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो जंग का मसला है, और बाकी मसाइल उसी महवर के गिर्द घूमते हैं, क्योंकि ये सूरा मदीना में उस वक़्त नाजिल हुई जब मुसलमानों की दुश्मनान इस्लाम के साथ जंग जोरों पर थी। बाज़ मुफस्सरीन के बकौल जंग उहद के दौरान या उसके बहुत थोड़े अरसे के बाद ये सूरत नाजिल हुई है। अज़ान मोहतरम, हम इस सूरा जो सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस सूरत की तिलावत के बारे में जो रवायात हैं कि तिलावत की फजीलत क्या है, उस बारे में भी एक आध रवायत आपकी खिदमत में अर्ज़ करके फिर हम सूरह की तिलावत का आगाज़ करेंगे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, जो शख्स सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिलावत करेगा, खुदा पर हक बन जाता है कि उसे बहिश्त की नहरों से सैराब करे। यानी जो इस सूरत की तिलावत करे उसके लिए खुदा अपने ऊपर हक समझता है कि उसको बहिश्त की नहरों से सैराब करे। बस अमूमन किसी भी सूरत के बारे में जो उसकी फजीलत जो बयान होती है रवायात में, उसमें इंशाल्लाह इस बात की तरफ हम सब मुतवज्जे रहें कि वो फजीलत उस सूरत की कब हासिल होगी, जब उस सूरत के अंदर जो मतालिब बयान हुए हैं इंसान उन मतालिब को उन तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को उसके मुताबिक गुजारे और अपनी ज़िंदगी के अंदर उन तालीमात को एक भरपूर हिस्सा दे और अपने आप को उसी के कालिब में ढाल ले, तब वो फजीलत जो इस सूरह की तिलावत के उन्वान से ज़िक्र की जाती है वो फजीलत तब ही हासिल होगी। लेकिन अगर ऐसा ना हो कि इंसान फ़कत ज़ाहिरी तिलावत तो करे लेकिन अपने किरदार के ज़रिए से, अमल के ज़रिए से उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल ना करे, तो फिर यह फजीलतें जो सूरतों के बयान होती हैं उनका मिलना महाल लगता है। आगाज़ करते हैं इंशाअल्लाह पहली आयत से। अऊदु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली तीन आयतें मैं तिलावत करूंगा, उसके बाद उनके मतलब इंशाअल्लाह। अल्लदीना कफरु वसद्दु अन सबीलिल्लाहि अदल्ला अअमालहुम, जिन्होंने कुफर इख्तियार किया और राह खुदा में रुकावट डाली, अल्लाह ने उनके आमाल हब्द कर दिए। وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ. اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے، اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی. ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ. یہ اس لیے ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان کرتا ہے. عزیزان محترم، ان تین آیات کے اندر اگر ہم غور کریں مجموعی طور پر، ایک بات جو کی ہے، جیسے پہلی آیت میں اگر آپ دیکھیں، پہلی آیت میں اللہ نے کفار کا ذکر کیا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور رائے خدا میں رکاوٹ ڈالی، خود کافر ہوئے، اور دوسرے لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹ بنے، اللہ نے ان کے اعمال حبط کر لیے. اعمال کا حبط ہونے سے مراد کیا ہے؟ دنیا میں ان کی گئی کوششیں ضائع ہو گئی، جو دنیا میں انہوں نے کوششیں کی، کاوشیں کی، وہ ضائع ہو گئے. پھر اس کے مقابلے میں دوسری آیت میں اگر آپ دیکھیں تو ایمان لانے والوں کے لیے اللہ نے پھر ایمان لانے والوں کی تعریف کی کہ جیسے، اور جو لوگ ایمان لائے اور صالح عمل بجا لائے. یاد رکھیے گا، جہاں کہیں بھی قرآن میں، یہ مائک آف کر لیں بیٹا، مائک آف کریں جن کا مائک آن ہے، زوم پہ. جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے اور ان کے رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے. یعنی کیا؟ ایمان لائے اللہ پر اور عمل صالح بجا لائے اور جو کچھ رسول اللہ پر نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان لائے اور ان کی رب کی طرف سے حق بھی یہی ہے. یہ ایمان لانا حق ہے، جو حق کہلاتے وہ یہی ہے. تو اللہ نے ان کے گناہ دور کر دیے، ان سے جو بھول چوک میں غلطیاں ہو گئیں، ان سے جو خطائیں سرزد ہو گئیں، ان سے جو گناہ سرزد ہوئے، انجانے میں ہوئے، اللہ نے ان کے گناہ ان سے دور کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی، اور ان کے حال کی اصلاح فرمائی، یعنی ان کے لیے اصلاح طلب ان کی زندگی کو بنایا. اسی طرح اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ نے کفار اور صاحبان ایمان کا ایک تقابل کروایا. کیا؟ کہ یہ جو کافروں کے اعمال حبط ہوئے، یہ جو کفار کے اعمال ضائع ہوئے، اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ اس لیے ہے کہ کفار نے باطل کی پیروی کی، کیونکہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی طرف سے ان کے گناہوں کا دور ہونا اور ان کے حال کی اصلاح فرمانا، اس کی وجہ کیا تھی؟ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ. کیونکہ ایمان لانے والوں نے اس حق کی اتباع کی جو ان کے پروردگار کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے ان کے اوصاف بیان کرتا ہے. اللہ وصف بیان کر رہا ہے، اللہ صفت بیان کر رہا ہے، اور اس صفت کے بیان کرنے کا مطلب یہی بنتا ہے کہ انسان کے سامنے وہ انسان کہ جس کو خدا نے راستہ چننے کا اختیار دیا ہے، ارادے کا اختیار دیا ہے، تمہارے سامنے اوصاف بیان ہوئے. کافر کے اوصاف یہ ہیں، ایمان لانے والوں کے اوصاف یہ ہیں، तुम अपने अंदर जिन सिफात को पैदा करोगे तुम वैसे बन जाओगे। आयत नंबर 4, फ़ैज़ा लकी तुमुल्लदीन कफरू फ़ज़रबर रकाब हत्ता इदा अस्खन तुमूहुम फ़शद्दुल वसाक फ़इम्मा मन्नम बादु वइम्मा फिदाअन हत्ता तज़ा अल हर्बु अवज़ारहा ज़ालिक वलो यशाउल्लाहु लंतसर मिन्हुम वलाकिन लियब्लुवा बादकुम बिबाद वल्लदीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि फलन युदिल्ला अमालहुम। पस जब कुफार से तुम्हारा सामना हो तो उनकी गर्दनें मारो, यहाँ तक कि जब उन्हें खूब कत्ल कर चुको तो बचने वालों को मजबूती से कैद कर लो। इसके बाद एहसान रखकर या फिदिया लेकर छोड़ दो ता वक्ते की लड़ाई थम जाए। हुक्म यही है और अगर अल्लाह चाहता तो उनसे इंतकाम लेता, लेकिन अल्लाह को ये मंजूर है कि तुम में से एक का इम्तिहान दूसरे के जरिए से ले, और जो लोग राह खुदा में शहीद किए जाते हैं अल्लाह उनके आमाल हरगिज़ हबत नहीं करेगा। आयत नंबर 5, सयहदीहिम वयुस्लिहु बालहुम, वो अनकरीब उन्हें हिदायत देगा और उनकी हालत की इसलाह फरमाएगा। वयुदखिलुहुमुल जन्नत अर्रफहा लहुम, और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिसकी उन्हें पहचान करा दी है। इन तीन आयात के अंदर बिलखुसूस जो पहली आयत है कि जिसमें कुफार के बारे में एक वाज़े हुक्म अल्लाह की तरफ से आया कि उनकी गर्दनें मारो, गर्दन मारने का जो उनवान है वो यकीनन वही कत्ल करने का है, गर्दन मारना वही कत्ल करना। तो यहाँ पर है कि जब कुफार से तुम्हारा सामना हो तो उनकी गर्दनें मारो। तो याद रखिएगा, इस सामने का मतलब ये नहीं है कि जहाँ तुम्हें नज़र आ जाएं, किसी गली में चलते फिरते में नज़र आ जाएं, मार्केट में नज़र आ जाएं, दुकान पे नज़र आ जाएं। इस लिका, इस मुलाकात का मतलब मैदान जंग की मुलाकात है, मैदान जंग की मुलाकात। जब मैदान जंग में तुम्हारा कुफार से सामना हो, इस्लाम यकीनन दिफाई जंग करवाता है, इस्लाम के अंदर इस्लाम जारहाना जंग करवाता ही नहीं है कि किसी पर हमला कर ले डायरेक्ट जाकर। यकीनन जब मैदान जंग सजे और कुफार तुम्हारे सामने आ जाएं, तुमसे लड़ने के लिए तैयार होकर सामने आ जाएं, अब तुम इनसे लड़ो, इनकी गर्दनें मारो। हत्ता इज़ा अस्खन तुमूहुम फशद्दुल वसाक, अस्खन तुमूहुम का जो लफ्ज़ है, सखन जो है सिखर सिखन शिकन बरोज़, ये सिखन ठोस और सख्त होने को कहते हैं। इसीलिए इसका इतलाक दुश्मन पर मुकम्मल फतह व कामरानी, वाज़ेह गलबा और मुकम्मल तसल्लुत हासिल करने के लिए है। बस ये कि तुम जब इन्हें खूब कत्ल कर चुको, ये एक मफहूम जो बन इसका आयत का बन जाता है, तो बस जब तुम इन्हें कत्ल कर चुको, जब जंग हो जाए और एक मरहले तक पहुंच जाओ कि ये अक्सर इनमें से ये जान से जा चुके हों और अब कुछ रह गए हों, अब क्या करो जो रह गए हैं, अब इनमें से उनको अब तुम इनको कैदी बना लो, यहाँ तक कि जब ये जंग की आग ठंडी हो जाए तो इनमें से जो रह जाएंगे उनको तुम कैदी बना लो मजबूती से। फशद्दुल वसाक का जो लफ्ज इस्तेमाल किया है, वसाक जो है ये ताबीर अमूमन रस्सी के लिए वसाक का लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो ऐसी रस्सी के जिससे किसी चीज को बांधा जाता है, तो जंगी कैदियों को अच्छी तरह बांधने की तरफ इशारा है, यानी मजबूती से इनको गिरफ्तार कर लो कि जो अब जंग जब लड़ाई थम जाती है तो इनको जब तुम मजबूती से गिरफ्तार करो। अब कैदी जिनको बनाया है उनके साथ सुलूक क्या करना है, दो तरह की बातें यहां पर जिक्र हुई है। पहली बात, अब जब तुम उनको जंगी कैदी बना चुके हो तो या एक तो यह कि उन पर एहसान करो और उन्हें आजाद कर दो। आजाद अगर करना है तो एहसान करके, उन पर एहसान करके उनको आजाद करो। दूसरा ऑप्शन क्या है, या फिदिया लेकर छोड़ दो, उनसे फिदिया लो और उनको छोड़ दो। अच्छा, अब यहां एक और मौजू भी बयान हुआ है, वो क्या है, उस तरह मुतवज्जे रहिएगा। वो है कि वलौ यशाउल्लाहु लंतसर मिनहुम वलाकिन लियब्लुवा बअज़कुम बिबअज़िन। अल्लाह कह रहे हैं कि ये अल्लाह का हुक्म था, अगर अल्लाह चाहता उनसे इंतकाम लेना, अगर अल्लाह चाहता तो खुद इंतकाम लेता कुफार से, उनके ऊपर कोई अजाब डाल देता, उनके ऊपर कोई आसमानी अजाब आ जाता। लेकिन अल्लाह ने क्या चाहा, लेकिन अल्लाह को मंजूर ये था कि तुम में से एक का इम्तिहान दूसरे के जरिए ले, यानी इम्तिहान ले तुम्हारा। ऐसे मुसलमान का भी इम्तिहान है, याद रखें जब जंग का मैदान सजता है तभी तो ईमान वालों को पता चलता है कि जहां पता चलता है कि जान देनी है, क्योंकि दूध पीने के लिए तो सब कोई तैयार हो जाते हैं। हालत अमन में तो सब साहिबान ईमान होते हैं। एक छोटा सा वाक्य अर्ज कर देता हूँ, तवज्जो रखिएगा। ये जो है ना, वलाकिन लियब्लुवा बअज़कुम बिबअज़िन, जब मैदान कारज़ार सजेगा, जब मैदान जहाद मैदान रज़्म सजेगा, तो उस वक्त पता चलेगा कि साहिबान ईमान का ईमान किस कौन कौन अपने गुफ्तार के मुताबिक किरदार का हामिल है और किसके गुफ्तार और किरदार में तजाद है। ये लैला मजनू के किस्से में एक किस्सा बयान किया जाता है कि लैला ने दूध भिजवाया अपने किसी कनीज के ज़रिए मजनू के पास, तो कनीज मजनू को चेहरे से जानती नहीं थी, उसे था एक जगह का पता था, वहाँ गई तो उसने देखा कुछ लोग बैठे हुए थे, उसने आवाज़ दी तुम में से मजनू कौन है, तो एक शख्स ने पूछा क्यों, उसने कहा लैला ने दूध भिजवाया पीने के लिए, उसने कहा मैं हूँ मजनू, और उनसे दूध लेकर उस कनीज से दूध लिया और दूध पी के बर्तन वापस कर दिया। इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा कुछ दिन तक, तो लैला ने अपनी कनीज से पूछा ये जो तुम मजनू को दूध ले जाके देती हो तो क्या उसकी तरफ से कोई पैगाम नहीं मिलता, या वो कोई मुझे कोई पैगाम दे, कुछ कोई सलाम भिजवाए। उसने कहा नहीं कुछ भी नहीं कहता, बस वो दूध पी लेता है और उसके बाद बर्तन वापस कर देता है। तो लैला ने इस दिन एक दिन कहा कि आज खाली बर्तन लेकर जाओ और उससे जाकर कहो कि आज इस बर्तन में अपना खून भर के दे दो, दूध नहीं भिजवाया। लैला ने कनीज गई और उससे जाके ये मुतालबा किया तो उसने कहा नहीं 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 मैं मजनू नहीं हूँ, असल मजनू वो है, मैं सिर्फ दूध पीने के लिए मजनू बन गया था। तो याद रहे ईमान का इजहार उस वक्त हो जाता है कि जब कोई मुश्किल आ जाती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मशहूर जुमला, इमाम ने कहा ना कि जब मुश्किलें आती हैं, जब बलाएं नाजिल होती हैं, तब पता चलता है कि साहिबान ईमान कौन है, तब पता चलता है कि दीनदार कौन बचता है उस वक्त। जब तक अपने मफाद चलते रहे तो हर कोई दीनदार बनने के लिए, ईमान वाला बनने के लिए तैयार होता है। इसीलिए खुदा ने कहा अल्लाह चाहता तो कुफार पर खुद जाके खुद अल्लाह की तरफ से कोई अजाब आ जाता, अल्लाह ने चाहा कि आजमाए तुम में से एक दूसरे के जरिए से, फिर अल्लाह ने जो साबित कदम रहे ईमान पर उनके लिए ऐलान किया क्या, और जो लोग राय खुदा में शहीद किए जाते हैं अल्लाह उनके अमाल हरगिज हब्त नहीं करता, अल्लाह उनका अमल ज़ाया नहीं करता कभी भी। क्या होगा उनके लिए, सयहदी हिमयसलिहु बालहुम, वो अनकरीब उन्हें हिदायत देगा और उनकी हालत की इसलाह फरमाएगा। वयुदखिलहुमुल जन्नत अर्रफहा लहुम, और उन्हें जन्नत में दाखिल करेगा जिसकी उन्हें पहचान करा दी है। शहदा की जो फजीलत है, शहदा का जो दर्जा है, याद रहे शहदा का दर्जा बहुत आगे का है, यानी उनको उनके लिए जन्नत की पहचान करवा दी गई है। जैसा कि हम शहदाए करबला के बारे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको उनका मकाम दिखला दिया था कि तुम्हारा मकाम खुदा के यहाँ क्या है, जब उनका इम्तिहान हो चुका तो फिर उनके लिए उनका मकाम मुअय्यन हो गया था। कुछ अहादीस हैं शहदा के बारे में, एक दो अहादीस आप इसको समाप्त फरमाएंगे इंशाल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। हर नेकी से बढ़कर एक नेकी होती है जब तक इंसान राह खुदा में शहीद न कर दिया जाए, जब उसे शहादत मिल जाती है तो फिर उससे बढ़कर कोई नेकी नहीं है। यानी शहादत बहुत बड़ी नेकी है। बस याद रखिए शहादत के बारे में एक जुमला और, कि शहादत खुद मकसद नहीं है बल्कि किसी बड़े मकसद के लिए शहादत पेश की जाती है। शहदा के दर्जात होते हैं, बहुत सारे दर्जात हैं शहदा के। जैसे एक जो ख़ास जो इसका मफहूम बनता है शहादत का, वो वही मैदान रज़्म है और खुदा के दीन की खातिर, खुदा के दीन की सरबुलंदी की खातिर इंसान जब निकल कर अपनी जान को, अपने मकसद को समझते हुए जब अपनी जान कुर्बान करता है, तो ये शहादत का सबसे बुलंद तरीन दर्जा है। उसके अलावा शहादत की बहुत सारी किस्में गिनवाई गई हैं रवायात में, 30 से ज़ायद किस्में हैं जो शहादत की गिनवाई गई हैं। यहाँ चूँकि ज़्यादा तफसील तलब, इसलिए मैं उस मौजू की तरफ नहीं जा रहा। बस एक और उन्वान जो है, इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं आयत नंबर 7 की तरफ। आयत नंबर 7 से 11 तक आप मुतवज्जे रहेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो भी तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदम रखेगा। वल्लज़ीना कफरू फतअसल लहुम व अदल अअमालहुम। और जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है उनके लिए हलाकत है और अल्लाह ने उनके आमाल को बर्बाद कर दिया है। आयत नंबर 9। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अन्ज़लल्लाहु फअहबत अअमालहुम। ये इसलिए है कि उन्होंने उसे नापसंद किया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है, बस अल्लाह ने उनके आमाल हब्त कर लिए। अफलम यसीरू फिल अर्द फयंदुरू कैफ कान आकिबतुल लदीन मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफिरीन अम्थालुहा। क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं हैं कि वो देख लेते कि उनसे पहले वालों का क्या अंजाम हुआ। अल्लाह ने उन पर तबाही डाली और कुफार का अंजाम भी इसी किस्म का होगा। ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ। ये इसलिए है कि मोमिनीन का मौला, मोमिनीन का सरपरस्त अल्लाह है और कुफार का कोई सरपरस्त नहीं है, कोई कुफार का मौला नहीं है। ये 5 आयात, आयत नंबर 7 से लेकर 11 तक। अब इसकी थोड़े से मफाहिम की तरफ इंशाल्लाह हम मुतवज्जे रहेंगे। पहली जो आयत है कि तुम खुदा की मदद करो, खुदा भी तुम्हारी मदद करेगा। क्या खुदा किसी की मदद का मोहताज है? यकीनन नौज़बिल्लाह ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो अल्लाह ने कहा इन तंसुरुल्लाह, कि तुम अल्लाह की मदद करोगे, तो अल्लाह की मदद से मुराद वही दीन खुदा की तरवीज में मदद है, वहीं रसूल खुदा की मदद करना, रसूल खुदा की नुसरत करना, अल्लाह के नबी की पुकार पर लब्बैक कहना, दीन इस्लाम की ज़रूरत के वक़्त लब्बैक कहना, दीन की मदद करना, यही अल्लाह की मदद है। अच्छा, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जैसे मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो यहाँ जो कहा है कि युसब्बित अक़दामकुम, तुम्हारे कदम, तुम्हें साबित कदम रखेगा। मैदान जंग हो तो मैदान जंग के ऊपर साबित कदमी चंद तरह की होती है। एक तो है कि मैदान में साबित रहना जिहाद के मामले में, जंग करने के मामले में। एक साबित कदमी अफकार की होती है, इंसान फिक्री तौर पर साबित कदम रहेगा। अगर तुम दीन के लिए मददगार बने हुए हो तो खुदा तुम्हें फिक्री तौर पर साबित कदम रखेगा। وَإِذَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ। और जिन्होंने कुफर किया, तअसल लहुम, उनके लिए हलाकत है। यहाँ पर तअस का जो माना आया है, इसका माना है डगमगाना और मुंह के बल गिरना। बाज लोगों ने उसका माना हलाकत और पस्ती बयान किया, उन्होंने असल में ये नतीजा बनता है डगमगाना और मुंह के बल गिरना, तो ये नतीजा हलाकत ही है। वह अज़ल्ला अमालहुम, और अल्लाह ने उनके आमाल को बर्बाद कर दिया। अल्लाह ने बर्बाद कर दिया, क्या वजह है? ये कानून अल्लाह का है, जो कुफर करेगा, ये अल्लाह का कानून है, अल्लाह ने कानून रखा है, अल्लाह ने उसूल तय किया है। अगर कुफर करोगे, अगर इनकार करेगा जानबूझकर खुदा की निशानियों का, आयात का, तो इसका नतीजा क्या होगा? आमाल बर्बाद हो जाएंगे। ये खुदा का कानून है जो अल्लाह ने बनाया है, इसीलिए आप बोलते हैं अल्लाह ने बर्बाद की। अल्लाह का बर्बाद करने का ऐसा मतलब नहीं है कि इंसान को नेकिया करना चाहे अल्लाह बर्बाद कर दे उसके अमल, यूं मतलब नहीं है, बल्कि क्या अल्लाह का उसूल है कि अगर ये काम करोगे तो उसका ये नतीजा निकलेगा, अगर कुफर करोगे तो अमल बर्बाद हो जाएंगे। आगे आगे अगले आयत में वजह भी बयान कर दी है, ज़ालिका बिअन्नहुम करिहु मा अनज़लल्लाहु फअहबता अमालहुम। ये जो उनके अमाल बर्बाद हुए हैं, ये किस वजह से हुए? ये इसलिए कि इन्होंने उसे नापसंद किया जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है। ये जो कुरान अल्लाह ने नाजिल किया है, इसको नापसंद किया इन्होंने। बस इस कुरान को नापसंद करने का नतीजा क्या निकला? अल्लाह ने उनके आमाल हबत कर दिए, उनके आमाल ज़ाया हो गए। बस याद रखिएगा कि अगली आयत में, आयत नंबर 10 में है कि कुछ इसमें निशानियां गिनवाई हैं कि आसपास के इलाकों में तुमसे पहले जो कौमें गुजर चुकी हैं उनके तरफ मुतवज्जे करवाते हुए, अफलम यसीरू फिल अर्द फयंदुरू कैफ कान आकिबतुल लदीन मिन क़ब्लिहिम दम्मरल्लाहु अलैहिम वलिल काफिरीन अम्सालुहा। क्या ये लोग जमीन में चलते फिरते नहीं है कि वो देख लेते कि इनसे पहले वालों का क्या अंजाम हुआ? अल्लाह ने उन पर तबाही डाली और कुफार का अंजाम भी इसी किस्म का होगा। बस अगली आयत, आयत नंबर, यानी जो इससे पहले की उम्मतों के साथ जो सलूक हुआ है कि जिन्होंने अल्लाह की आयात को जब झुठलाया, जिन्होंने तालीमात खुदाबंदी के मुताबिक, अंबिया की तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगियों को नहीं ढाला, तो जिस तरह वो मुआशरे, वो इलाके, वो कौमें तबाह हुई हैं, उसी तरह इनके लिए भी तबाही है। आयत नंबर 11, ये इसलिए है, यानी ये सब कुछ ये कि जो कुफार के लिए तबाही है और मोमिनीन के लिए जो राहत है, इसकी वजह क्या है? ये इसलिए है कि मोमिनीन का मौला अल्लाह है, मोमिनीन का मौला अल्लाह है। وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ, اور کافروں کا کوئی مولا, کوئی سرپرست نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا, شیطان سرپرست نہیں بنتا۔ شیطان کی صفت کیا ہے؟ ابلیس کی صفت کیا ہے؟ دعوت گناہ دیتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک جملے کے, اس میں یہ جملہ موجود ہے, اور قرآن کے اندر بھی وہ آیات موجود ہیں کہ جب ابلیس اظہار برات کرے گا کیا ہوتا ہے؟ ابلیس دعوت گناہ دیتا ہے, انسان جب اس کے दावत के मुताबिक गुनाह अंजाम दे देता है तो अजाब खुदा के सामने इबलीस छोड़कर चला जाता है, और इबलीस का ऐलान ये होता है, मैंने तो तुम्हें दावत दी थी गुनाह के लिए और तुमने तो मेरी दावत कबूल की है। अल्लाह ने तुम्हें नेकी की दावत दी थी, मैंने तुम्हें गुनाह की दावत दी थी, तुमने दावत गुनाह कबूल किया है। इबलीस कहता है कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, तुम्हारा, तुम्हें, तुम ही कसूरवार हो। बस अल्लाह मौला है मोमिनीन का, कारसाज है। याद रखिएगा, ये बहुत उम्मीद अफजा आयत है साहिबान ईमान के लिए। अगर हमारे दिलों के अंदर ईमान मौजूद है, अगर साहिब ईमान है, तो ये आयत, जैसे बाज़ मुफस्सरीन ने, यहाँ एक जुमला है वो पढ़ना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत है, तफसीर नमूने की जिल्द नंबर 12 है। बाज़ मुफस्सरीन कहते हैं कि ये आयत कुरान की तमाम दूसरी आयात से ज़्यादा उम्मीद बख्श है, यानी क्योंकि ये तमाम मोमिनीन, मोमिनीन सबको शामिल कर लिया, साहिबान ईमान को शामिल कर लिया। हो सकता है कोई आलिम हो, उसमें पढ़े लिखे ना हो, हो सकता है कि उनमें जाहिद हो, रागिब हो, हो सकता है छोटे हों, बड़े हों, किरदार तकवा के लिहाज से आगे पीछे हों, सबको शामिल किया, बूढ़े हों, जवान हों, औरतें हों, मर्द हों, सबको। क्या कि ये सब कि खुदा उनका मौला है और खुदा सख्त हवादिस और जानकाह मसाइब में अपनी हिमायत के नमूने दिखा चुका है। अगर वैसे हम खुद में और आप भी, हम अपनी ज़िंदगी में गौर करें, तो खुदा ने अपनी सरपरस्ती का हक अदा किया है बहुत सारे ऐसे मुश्किल मराहिल कि जहाँ हम फंस गए, हमारे लिए मुश्किल बनी, हम उनसे गुजर नहीं सकते थे, आगे बढ़ नहीं सकते थे, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, मसला हल नहीं हो रहा था, बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन वहाँ खुदा ने मदद की और खुदा ने अपनी सरपरस्ती का हक अदा किया। खुदा मौला है, खुदा संभालने वाला है, खुदा सरपरस्त है। एक वाक़या रसूलुल्लाह का है, इसी आयत के ज़ेल में यहाँ बयान हुआ है कि एक जंग से वापसी पर रसूल खुदा एक दरख्त के नीचे अकेले ये बैठे हुए थे, आराम कर रहे थे, तो अचानक एक मुशरिक वहां पर आया। उसने तलवार नयाम से निकालकर आप पर तान कर कहा, मैं यखलिसु कमिन्नी। अब बताओ, इन वो मुशरिक रसूलुल्लाह से कहता है, अब बताओ तुम्हें मुझसे कौन बचा सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्जस्ता जवाब दिया, अल्लाह। कोई पूछा ना तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह बचाएगा, अल्लाह। ये सुन कर कहते हैं उस मुशरिक के पांव डगमगा गए, वो जमीन पर गिर पड़ा और तलवार उसके हाथ से छूट गई। रसूलुल्लाह ने वो तलवार उठाकर फरमाया, अब तुम बताओ कि तुम्हें मेरे हाथों से कौन छुड़ा सकता है। तो उसने कहा कोई नहीं, और उसे बाद की बात भी समझ आ गई और वो ईमान लाया। बस खुदा तमाम मोमिनीन का मौला है और कुफार का ना तो कोई मौला है और ना उनकी कोई पनागा है। अगली आयत, आयत नंबर 12, 13 और 14 की तरफ तवज्जो करेंगे। इन्नल्लाह युदखिलुल्लदीना आमनू वामिलु सालिहाति जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार वल्लदीना कफरू यतमत्तऊना वयाकुलूना कमा ताकुलुल अनआमु वन्नारु मस्वल लहुम। अल्लाह ईमान लाने वालों और सालेह आमाल बजा लाने वालों को यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो लोग काफिर हो गए वो लुत्फ उठाते हैं और खाते हैं तो जानवरों की तरह खाते हैं, और उनका ठिकाना जहन्नम है। वकअय्यिम मिन करियतिन هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم। और बहुत सी ऐसी बस्तियां जो आपकी उस इस बस्ती से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं, जिसके रहने वालों ने आपको निकाला है, हमने उन्हें हलाक कर डाला, बस उनका कोई मददगार न था। अफमन काना अला बय्यिनतिम मिर रब्बिही कमन ज़ुय्यिन लहु सूउ अमलिही वत्तबउ अहवाअहुम। क्या जो शख्स अपने परवरदिगार की तरफ से वाज़ह दलील पर हो, उस शख्स की तरह हो सकता है जिसके लिए उसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया हो और जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की हो। इन तीन आयात की तरफ मुतवज्जे रहिएगा। अल्लाह ईमान वालों, अब यहां पर समझे पिछले जो आयात के अंदर ईमान वालों का और काफिरों का जो तकाबुल हो रहा था, उसका नतीजा यहां पर अल्लाह ने एक समझे नतीजे की तरफ इन आयात में लेके आए हैं। ईमान लाने वालों और सालेह अमाल बजा लाने वालों को यकीनन ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ईमान और अमल सालेह बजा लाने वालों के लिए तो जन्नतें हैं कि जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। वल्लदीना कफरू, और वो लोग कि जो कुफर करने वाले हैं। यतमत्तऊना, यतमत्तऊना का लफ्ज़ अमूमन इस्तेमाल होता है दुनिया की इस आरजी जिंदगी का, जो उसमें जो इस आरजी जिंदगी में जो लुत्फ होता है, जो आरजी जिंदगी इस दुनिया की जिंदगी में लुत्फ उठाना, इस दुनिया की जिंदगी में आसूदगी, इसी में सब कुछ होना, इसके लिए यतमत्ताउन का वो जुमला इस्तेमाल होता है। बस लुत्फ उठाते हैं जो कुफर करने वाले हैं, वो लुत्फ उठाते हैं इस दुनिया की जिंदगी का। वयाकुलून कमा ताकुलुल अनआम, और जब खाते हैं तो जानवरों की तरह खाते हैं, जानवरों की तरह खाते हैं। वन्नार मस्वल्लहुम, और उनका ठिकाना जहन्नम है। याद रखिएगा खाने और गिज़ा के बारे में है कि वो कुफार की हालत क्या है खाने के बारे में, जानवरों की तरह खाते हैं, ना उन्होंने पाक और हलाल को देखना है, ना उन्होंने नजिस और हराम से गुरेज करना है, जो मिला जैसा मिला खाएंगे। जबकि मोमिन का इत्आम, मोमिन का खाना, जैसे मोमिन के खाने के बारे में एक जो यहाँ पर जुमला है उसकी तरफ मुतवज्जे रहेगा कि मोमिन का खाना तीन सूरतों से खाली नहीं होता, तीन सूरतों के अलावा नहीं होता मोमिन का खाना। वो क्या है? खाने के हुसूल में परहेजगारी, यानी उस खाने को हासिल करने के लिए वो तकवा से काम लेता है, तकवा के जरिए हासिल करेगा। अदब को काम में लाना, खाना खाते वक्त जो उसके आदाब हैं उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना, और मसरफ में मकसद को पेश नज़र रखना। खाना क्यों खाता है मोमिन? खाना क्यों खाता है? वो किसी मकसद के लिए खाना खाता है, खाने के लिए खाना नहीं खाता। यानी मोमिन का खाना खाना मकसद सिर्फ वो खाना नहीं है, बल्कि मोमिन किस लिए खाना खाता है? वो उस मकसद के लिए, इताअत खुदा के लिए जान पैदा हो जाए। मसलन एक एक, एक इसका इसका इस जुज बन सकता है। खाना खाता है ताकि एनर्जी पैदा हो और उसके ज़रिए से अल्लाह की इताअत कर सके। खाना खाता है एनर्जी पैदा हो ताकि अल्लाह के दुश्मनों के साथ मुकाबला कर सके। खाना खाता है ताकि उसके ज़रिए से जिस्म मजबूत रहे और खुदा की इबादत में उस जिस्म को बरकरार ला सके। खाना खाता है ताकि जिस्म को सेहतमंद रखे, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह की अता करदा नेमत है। इसको फजूल किस्म की चीज़ें खाकर, ऐसी गजाएँ कि जो इसके लिए मुज़र हैं उसको खाकर इस जिस्म को ख़राब नहीं करना। बस आदाब का ख्याल रखता है और मकसद, किसी बड़े मकसद के तहत उस गज़ा को इस्तेमाल करता है। जबकि काफिर की तलब रोज़ी गैर मशरूत है, काफिर की रोज़ी का कोई शर्त नहीं होती, जहाँ से आए जैसी आए खाएगा। उसका खाना शहवत के लिए, वो खाता है शहवत के लिए, वो शहवत के लिए खाना खाता है, और उसकी तमाम ज़िंदगी गफलत में गुजरती है, बेहदफ गुजरती है। उसकी ज़िंदगी का कुल मकसद इसी दुनिया तक के लिए होता है। याद रखें, ऐसे लोग माशरे के अंदर होते हैं जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं रहा। क्या मकसद है? कमाना है, खाना है, बस बच्चे पैदा करने हैं। जानवर भी तो यही करते हैं, जानवर भी तो खाता है, बच्चे नस्ल पैदा करता है। इंसान और जानवर में क्या फ़र्क रह गया? याद रहे, इंसान अगर किसी बड़े मकसद, बड़े हदफ के लिए ज़िंदगी गुजार रहा है तभी इंसान है वो, वरना कुरान ने कई जगहों पर इंसानों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उलाइक कल अनआम बल हुम अज़ल, कि ये जानवरों की तरह हैं बल्कि उनसे भी बदतर है, सूरह आराफ में जो कहा है। तो याद रहे, इंसान बिला हदफ, इंसान बगैर हदफ के, इंसान अपनी ज़िंदगी गुजारे किसी बड़े मकसद के बगैर, अगर ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो ये खाना पीना और ये जो दौड़ धूप होगी ये जानवरों वाली दौड़ धूप होती है, जबकि इंसान किसी बड़े मकसद के लिए ज़िंदगी गुजारता है, बंदे मोमिन बिलखसूस। अब अगली जो आयत है, आयत नंबर 13 में, ये हिजरत मक्का का जो मंज़र था उसकी तरफ एक इसमें तस्वीर कशी की है। वो क्या है? और बहुत सी ऐसी बस्तियां हैं, आयत नंबर 13 में, और बहुत सी ऐसी बस्तियां जो आपकी इस बस्ती से कहीं ज़्यादा ताकतवर थीं, जिसके रहने वालों ने आपको निकाला है। ए मेरे नबी, ये मक्का के जिन कुरैश ने, जिस इस मुशरिकीन के सरदारों ने, जिन्होंने आपको मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर बस्तियाँ थीं कि जिन्हें अल्लाह ने हलाक कर डाला, बस उनके कोई मददगार न था। मक्का अल्लाह के नबी के लिए महबूब तरीन शहर था। बस एक हदीस जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से निकल के हिजरत के लिए गार थौर की तरफ जा रहे थे, तो अल्लाह के नबी ने उस वक़्त मक्का की तरफ जब निकले ना, तो आगे जब मक्का शहर से दूर हुए, सामने मक्का शहर नज़र आ रहा था, अल्लाह के नबी मक्का शहर को मुखातब करके कहते हैं, तू खुदा के नज़दीक, यानी मक्का शहर से कहते हैं, तू खुदा के नज़दीक भी महबूब तरीन शहर है और मेरे नज़दीक भी महबूब तरीन शहर है। अगर तेरे रहने वाले मुशरिक लोग मुझे ना निकालते तो मैं अपनी मर्जी से कभी ना निकलता। ये मक्का से मोहब्बत का इजहार था अल्लाह के नबी का। बस एक नुक्ता यहाँ पर ज़रूर अर्ज करूँगा तमाम अहबाब को, याद रखें, मक्का की मोहब्बत मोमिन के दिल में होनी चाहिए। खाने खुदा, खाने काबा की मोहब्बत इंसानों के, मोमिनीन के दिलों में ज़रूर होनी चाहिए। एक तड़प रहनी चाहिए कि काबा को काबा जाना है, काबा का तवाफ करना है, गलाफ काबा को थामना है, मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़नी है, सफा और मरवा के बीच में सही करनी है, हज उमरे के लिए जाना है। याद रखिएगा, अव्वलीन इन अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, पहला घर जो अल्लाह ने लोगों के लिए बनाया, जो लोगों के लिए पहला घर बनाया गया वो मक्का है, वो मक्का का घर है, वो खाने खुदा है। लिहाजा अल्लाह के नबी जिस तरह मक्का से मोहब्बत करते थे, इसी तरह ईमान वालों के दिलों में भी इस खाने खुदा के लिए, इस हरम के लिए मोहब्बत ज़रूर होनी चाहिए और वहाँ जाने की तड़प भी ज़रूर होनी चाहिए। आयत नंबर 14 में अल्लाह ने जो बयान किया, आयत नंबर 14, क्या जो शख्स अपने परवरदिगार की तरफ से वाज़ह दलील पर हो उस शख्स की तरह हो सकता है जिसका बुरा अमल खुशनुमा बना दिया गया हो और जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की हो। यहाँ पर एक तकाबुल करवा दिया दोबारा। क्या तकाबुल है? अफमन काना अला बय्यनतिम मिन रब्बिही, क्या वो शख्स की जो अपने परवरदिगार की तरफ से वाज़ह दलील पर हो, यानी कि जिसके पास अथेंटिक दलील है अपने अमल के लिए, अपने उन तालीमात के लिए जो ज़िंदगी वो गुजार रहा है खुदा की बताई हुई दलील के मुताबिक, जिसके पास दलील है, क्या वो उसके बराबर हो सकता है कि जो ऐसा है कि उसके बुरे अमल को खुशनुमा बना दिया है, करता गुनाह है, करता गलत है, लेकिन वो गलत करना उसे खूबसूरत लगता है, अपनी गलतियों को भी अच्छा समझ रहा है, अपनी गलतियों को भी उसके लिए खुशनुमा है, उसके लिए वो बेहतरीन चीज़ें हैं कि जो वो अंजाम दे रहा है। और वजह क्या है? ये जो बुरे अमल इंसान के लिए मुजय्यन हो जाते हैं, क्या वजह है? वत्तबउ अहवाअहुम, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की हो। बस याद रखिएगा, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी इंसान को उबूदियत के दर्जे से निकाल देती है, क्योंकि कुरान मजीद ने इस तरह से इस्तेमाल किया इस मफहूम को, अफराईत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ए मेरे नबी क्या तूने उसे देखा है कि जिसने अपनी ख्वाहिशों को अपना माबूद बना लिया है, ख्वाहिशों का बंदा बन गया, गुलाम बन गया है। आज की दुनिया में इस जिद्दत दुनिया की जो जदीद शक्ल बन चुकी है कि जिसमें एक दौड़ है, एक रेस लगी हुई है, याद रखिएगा ये जो तो दौड़ लगी है, ये दिन रात की मेहनतें जो लगी हुई हैं, ये अंतक कोशिशें जो सब हो रही हैं, इसके पीछे ज़रूरत से ज़्यादा ख्वाहिश का अमल दखल होता है। किसी जगह लिखा हुआ था कि ज़रूरत फ़कीर की भी पूरी हो जाती है, ख्वाहिशें बादशाहों की भी पूरी नहीं होती हैं। आयत नंबर 15 पढ़ के इंशाल्लाह हम इख्तिताम करेंगे और इंशाल्लाह कल बाकी उससे आगे हम कल शुरू करेंगे। मसलुल जन्नतिल लती वुइदल मुत्तकून फीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन व अनहारुम मिन लबनिल लम यतगैर तअमुहु व अनहारुम मिन खमरिल लज्जतिल लिश्शारिबीन وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم। जिस जन्नत का परहेजगारों से वादा किया गया है उसकी मिसाल यूं है कि उसमें ऐसे पानी की नहरें हैं जो कभी बदबूदार न होगा और ऐसे दूध की नहरें हैं जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा और ऐसी शराब की नहरें हैं जो पीने वालों के लिए लज्जत बख्श होगी और खालिस शहद की नहरें भी हैं और इसमें उनके लिए हर किस्म के मेवे हैं और उनके रब की तरफ से मग़फ़िरत है। क्या ये उस शख्स की तरह हो सकता है जो हमेशा जहन्नम में रहेगा और जिन्हें खोलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को काट कर रख देगा। बस इस आयत में مزید جنت کی جہاں صاحبان ایمان اور عمل صالح بجا لانے والے جن کو اللہ داخل کرے گا اس جنت کی کچھ صفات بیان کی، اس جنت کی نعمتوں کا تھوڑا سا تعارف بیان کیا ہے، کیا کیا ہے اس میں؟ جیسے وہاں پر ایسے پانی کی نہریں ہیں جو کبھی بدبودار نہ ہوگا، آسن کا لفظ استعمال کیا یہاں پر، ما ان غیر آسن، آسن بدبو کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، ما ان غیر آسن ایسا پانی کہ جس میں بدبو پیدا نہ ہو. اگلی جو اگلی اس یعنی چار نہروں کا ذکر کیا ہے جنت کی، پہلی نہر ایسے پانی کی ہے کہ جس میں بدبو پیدا نہیں ہوگی، اس کے بعد دوسری نہر کس چیز کی ہے، وہ انہار من لبن، اس میں دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، جس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا، یعنی وہ خراب نہیں ہونے والا، ذائقہ نہیں بدلے گا اس کا. وانہار من خمر لذت للشاربین، ایسے شراب کی نہر کہ جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہو. یاد رہے اس میں جو شراب کا جو ذکر ہے اس سے مراد یہ دنیا کی یہ گندی اور نجس شراب کا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا مشروب ہے کہ جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، اور پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے، اور اس میں ایک اور جگہ قرآن میں ذکر ہوا ہے کہ وہ ایسی شراب ہے کہ جس سے عقل زائل نہیں ہونے والی، اور نہیں اس سے انسان کی عقل زائل ہوگی، نہیں وہ دماغ پر چڑھے گا. اسی طرح جو چوتھی نہر بتائی ہے وہ ہے وانہار من عسل مصفا، اور ان کے لیے خالص شہد کی نہریں بھی ہیں، خالص شہد کی نہریں بھی ہیں، اور ان چار نہروں کے علاوہ جو خدا کی طرف سے ان کے لیے نعمتیں ہیں اس میں پھلوں کا ذکر کیا، اور اس میں ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. جس کو یہ جنت ملی ہے کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور جنہیں کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا جو ان کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا، یعنی جس کو جنت کی یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں کیا یہ اس شخص کی طرح ہوگا کہ جس کو خدا نے جو جہنم جائے گا اور وہاں پر اس کے پینے کا مشروب ایسا ہے کہ وہ اس کی آنتوں کو کاٹ کر رکھ دے گا. آیت نمبر 15 کا یہاں پر اختتام ہوا، ہم انشاءاللہ یہیں پر ختم کریں گے. ایک گزارش ہوگی تمام خواہران سے کہ جو اس درس میں شامل ہوتی ہیں آپ اپنے کیمرے آف رکھا کریں، تو مناسب یہی ہے کہ آپ کے کیمرے آف ہوں، بعض کے کیمرے آن ہیں، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ اپنے کیمرے آف رکھیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ زوم پہ جو خواہران شامل ہوں وہ اپنے کیمروں کو آف رکھیں. یہ ذرا مہدی جو ہے ان کا بھی کیمرہ آن ہے تو ذرا آف کر لیجیے. جی اب میری طرف سے بات تمام ہے انشاءاللہ. ہمارا ایک درس صبح 4:15 پہ آدھے گھنٹے کا 30 منٹ کا درس ہوتا ہے دعا و مناجات کے حوالے سے، جس میں ہم سحر کے ان اوقات میں اللہ سے دعا اور مناجات، ہم سب مل کے کچھ مناجات کو منتخب کر کے اس وقت پڑھتے ہیں. تو آپ میں سے انشاءاللہ تمام احباب جو سحر کے اعمال میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں گے تو وہ انہی لنکس کے اوپر 4:15 پہ صبح ہم لائیو ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ اس وقت بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. کل اسی طرح 8 ہمارے درس کا آغاز ہوگا. اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، میری طرف سے بات تمام ہے. جی اگر کسی کا سوال ہے اور آپ موجود ہیں سوال پوچھنا چاہیں تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو ہم پھر دعا کے ساتھ اختتام کریں. इंशाल्लाह दुआ के साथ इख्तिताम करते हैं। जितने मोमिनीन मोमिनात बरादरान ताहरान हमारे साथ दुआ में शामिल थे और जितने अहबाब हमसे दुआ के लिए जिन्होंने इल्तिमास किया है, तो इंशाल्लाह सबके लिए दुआगो होंगे। और ये हमारा जो YouTube चैनल भी है जिसमें मुख्तलिफ मजालिस और दुरूस हमारे मौजूद हैं, तो आपसे जो भी इस वक्त हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, आपसे ये गुजारिश भी होगी कि थोड़ा सा वक्त निकाल के अगर आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि तबलीग दीन के इस काम में आप भी हमारे साथ शामिल हो जाएं। तो इंशाल्लाह इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और जो फेसबुक का पेज है उसको भी लाइक करें और इंशाल्लाह इस राह दीन में हम सफ़र बन के इंशाल्लाह अपने सफ़र को जारी रखेंगे। दुआ करते हैं सबके लिए, सबकी मुश्किलात की आसानी के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए, बीमारों की शिफायाबी के लिए, बेगुनाह असीरों की रिहाई के लिए, मकरूजों के कर्ज की अदायगी के लिए और इन तमाम इस बिलखसूस इस मौजूदा वबा से नजात के लिए और जो इसका शिकार हुए हैं उनकी सेहतयाबी के लिए, जो इसकी वजह से माली परेशानियों में हैं उनकी आसानी के लिए और इन तमाम मुश्किलात का हल इमाम ज़मान के ज़हूर में है, मौला इमाम ज़मान के ज़हूर की ताजील के लिए और रहबर मुअज़्ज़म की सेहत व सलामती, उनकी उम्र दराजी, आयतुल्ला सिस्तानी और दीगर मराजे की सेहत व सलामती के लिए 5 मरतबा आए मजीदा की तिलावत इन सब दुआओं की कबूलियत के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फरजहुम। بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا كاشف الكرب والسوء والبلاء اكشف كروبنا وكروب جميع المؤمنين واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين والسائلين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.